તારીખ 6/9/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 20. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા હમિંગ છે.
પ્રથમ અધિકાર થી 17-18 ગાથા ચાલ રહી છે. વાત કરી કે જૈસે ધનાર્થી પુરુષ રાજા કો પહેચાન કરકે ઉનકે ઉપર વિશ્વાસ કરકે ઉનકી સેવા કરતા હૈ તો ઉનકો અવશ્ય ધન કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. વૈસે જિસ જીવ કો જન્મ મરણ સે છૂટના હો, જિસકો અપના જીવન કા અંતિમ ધ્યેય પુરુષ શુદ્ધ હોને કા હો, થોડી ભી અશુદ્ધિ જિસકો નહીં ચાહીએ એસા જિસકા અભિપ્રાય હો ગયા હો, એસા જિસને નિર્ધાર કિયા હો, ઉસકો પહેલે જીવ રૂપી રાજા કો જાનના, ફિર ઉસી રીતે સે ઉસકા શ્રદ્ધાન કરના, ઔર ઉસકે બાદ ઉસી કા હી અનુસરણ કરના, અર્થાત અનુભવ દ્વારા ઉસમેં તન્મય હો જાના. ये गाथार्थ है. टीका में आचार्य महाराज विस्तार से इस बात को समझाते हैं कि निश्चय से जैसे कोई धनर्थी पुरुष बहुत उद्यम से प्रथम तो राजा को जानता है कि यह राजा है, तो राजा को जानने में भी बहुत उद्यम लिया है, प्रसार कर लिया है, क्योंकि यहाँ सिद्धांत को बताना है कि आत्मा जीव रूपी राजा को जानने में भी प्रथम बहुत उद्यम होना चाहिए. उद्यम होना मैंने क्या, उत्साह होना. इस विषय में एक गुरुदेव से दृष्टांत देते थे. जब शाम को गैया को दूध निकालते हैं, शाम को जब गैया का दूध निकालते हैं, गाय के दोते हैं, उस वक्त पहले उसके बछड़ा को छोड़ देते हैं, पहले उसके स्तन से दूधपान कौन करता है, बछड़ा करता है. क्यों ऐसा है कि गाय को अपने बछड़े के प्रति बहुत वात्सल्य होता है, तो इनकी जो अपने बछड़े के प्रति जो भी फीलिंग्स होती है, लागणी होती है, भावना होती है, उसको दूध पिलाने की, उसमें उसके स्तन में बहुत सा दूध आने लगता है, स्राव हो जाता है, इसलिए पहले बछड़े को छोड़ देते हैं. दृष्टांत तो उतना ही है कि सारे दिन बछड़े को बांध रखते हैं, क्योंकि वो बच्चा है, समझता नहीं है, इधर उधर दौड़ता है, घर में घूमता है, तो काम करता है, तो उनको सारे दिन बांध रखते हैं. जब शाम को उसको छोड़ते हैं तो उसकी जो डोरी है उसको छोड़ने को जाते हैं, उस वक्त उसको जो उमंग आता है, कितना उमंग आता है उसको, तो जमीन पर पैर नहीं रखता, उतना उछल कूद करने लगता है, तो जमीन पर पैर नहीं रख सकता। तो यहाँ पर कहते हैं कि अरे जी, क्योंकि तू तो अनादि से बंधा हुआ है, ये बछड़े तो सुबह से शाम तक बंधा हुआ था, लेकिन तू तो अनादि से बंधा हुआ है। अब तेरे छुटकारे की बात श्री गुरु करते हैं, पर तुझे कोई उमंग नहीं आता है क्या? बहुत उद्यम से जानता है वो जीव राजा को। क्या कहा आचार्य महाराज ने, तो बहुत प्रयत्न राजानम जानी थे, ऐसा लिखा है संस्कृत टीका में, कि कश्चित पुरुषो अर्थार्थी प्रयत्न मैंने पुरुषार्थ द्वारा बहुत उद्यम से वो राजा को जानता है। अपने जीव के स्वरूप को, अनादि से अनजाने स्वरूप को जानने के प्रथम काल में इतना उत्साह आना चाहिए, उतनी जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा जानने की जिज्ञासा और जानने का उत्साह दोनों साथ में होता है। कितना होता है मुक्षार्थी जीव को, कल मुक्षार्थी जीव का प्रवचन चला था सारा घंटा भर, तो उनको खाने में पीने में अपने हमेशा के जीवन में सभी जगह उसका रस फिक्का हो जाता है, रस निरस हो जावे। क्या हो जाए? रस निरसपना को प्राप्त हो जाए। आखिर में कल एक दृष्टांत लिया था कि जैसा कोई 50,000 का हीरा हाथ में से गिर जाता है और वो नहीं मिलता है, उसका मिलना नहीं होता है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, तो उनकी क्या हालत होती है? तो घर में से बुलाएंगे कि आप खाना खा लो पहले, बाद में ढूंढना, तो क्या बोलेगा? कि खाना खाने में मेरा जी लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा हीरा खो गया है, वो नहीं मिले तक मुझे खाने में रस नहीं आएगा। अगर खा लिया होगा और सोने का आराम करने का समय होगा और कहेंगे कि आराम तो कर लो बाद में ढूंढना, तो लेकिन मुझे तो आराम में और सोने में चैन आने वाला नहीं है, बेचैन हो जाता है, नींद नहीं आती। ऐसी जिज्ञासा जिसको अपूर्व जिज्ञासा कहने में आई है, गुरुदेव श्री ने परमागम सार में इस पर एक बोल बहुत अच्छा लिया है, शायद 190 नंबर का है या 210 नंबर का है, बहुत अच्छा बढ़िया बोल है। स्वरूप को निश्चय करने में, जानने में के काल में कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए? जब तक ऐसी तीव्र जिज्ञासा जीव को, मोक्षार्थी को नहीं आती, तो उनको सही खोज अंतर में नहीं होती। मेरा मूल स्वभाव क्या है, कैसा है, उनकी खोज भी कोई अपने ढंग से होती है, मामूली बात ये नहीं है। तो 190 नंबर का बोल है। वहां दृष्टांत ऐसा लिया है गुरुदेव ने कि जैसे जंगल में आप पड़े हो और चारों ओर सिंह आदि की आवाज सुनाई देती हो, बाघ की, सिंह की, चीता की तो गुर्कन होती है ना, वो तो सुनाई देती हो, तो क्या कोई सो जाता है? हाँ, अरे घर में सोता हो और कोने में कोई कबाट फर्नीचर के पीछे कोई सर्प की पूंछ दिख जाए, क्या सर्प पूरा नहीं दिखे? हाँ, समझ जी, कोई सर्प लगाएगा वहां का? हमने तो पूंछ दिखी है, पूरा तो नहीं देखा। हाँ, उपयोग में तो अंश आता है, स्वभाव अंश खुला रहता है, तो कोई ऐसा तर्क करेगा तो हमने तो पर्याय में सिर्फ अंश देखा है, हमने पूरा ही नहीं देखा। हाँ, हमने तो सर्प की पूंछ देखी काली काली, और पूरा सर्प तो देखा नहीं, इसलिए हमको डर नहीं होता है, ऐसा कोई कहेंगे क्या? हाँ, उसने पूंछ नहीं देखी है, पूरा सर्प उसने देख लिया है, और उसको नींद आने वाली नहीं, क्या वो सो जाएगा क्या? हाँ, तो चलो, वो तो घर के कोने में वो भी एक थोड़ी पूंछ बाहर रख करके पड़ा है, तो अपन तो सो जाओ, किसी को नींद आने वाली नहीं है। और कोई गुंडे मारने को पीछे पड़े हो, घर के अगल बगल में घूमते हो, इंतजार करते हो कि कब निकले हम मारे, किसी ने टेलीफोन कर लिया कि सावधानी से रहना, घर की खिड़की में भी अपना देख जाए, ऐसे फिरना घूमना भी मत करना और बाहर झोंकना भी नहीं, वरना फायरिंग हो जाएगा, पिस्तौल से मार देंगे, तो फिर वो सो जाता है क्या घर में? कि चलो किवाड़ बंद करके सो जाओ, कि नींद नहीं आएगी, उसको नींद नहीं आएगी। जैसे नींद नहीं आती, वैसे तत्व निर्णय नहीं करे, क्या कहते हैं गुरुदेव, वैसे मोक्षार्थी भी जब तक तत्व का निर्णय नहीं करता, वहां तक उसे सुख से, आराम से, चैन से नींद नहीं आती। अब ये गुरुदेव के वचन पर से हमको उतना ही मिलान करना है कि क्या तत्व निर्णय करने के काल में हमारी नींद उड़ गई क्या, या हम आराम से खा पी करके सो जाते तो पूरा पेट भर लिया, अब आराम से सो जाए, फिर आराम करके बाद शास्त्र लेकर बैठ जाएंगे, प्रज्ञा पढ़ने को क्या मिलने वाला? कि कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे निर्णय नहीं होता कभी। जिसको निर्णय हुआ है उसको ऐसी अपूर्व जिज्ञासा में ही निर्णय हुआ है, दूसरी तरह निर्णय हुआ ही नहीं किसी को। ये गुरुदेव बात सिद्धांत की तो करते हैं, सिद्धांत ऐसा ही है, साथ ही अपने अनुभव की बात करते हैं, तो हमको भी ऐसा हुआ था, कि शब्द प्रयोग नहीं किया है कि हमको ऐसा हुआ था, लेकिन वास्तव में ऐसा ही सबको होता है, वो अपने अनुभव से कहते हैं, कि अपने अनुभव को दर्शाते हैं कि ये जिज्ञासा काल में कैसी हालत तो होती है। तो ऊपर ऊपर की जिज्ञासा नहीं है क्या? ये देखते हैं ना अखबार को, सुबह सुबह अखबार को देखते हैं लोग, देख लेते हैं क्या समाचार आया, शाम को तो भूल जाते हैं कि सुबह क्या पड़ा था, 2 घंटे में भूल जाएगा, अपने काम में लग जाएगा। ऐसे जीव के परमागम जो है, आत्मा के परमागम है, तो इस प्रकार से पढ़ा नहीं जाता, इस प्रकार से सुना नहीं जाता। बहुत उद्यम से एक जिज्ञासा का विषय है कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होता है मुमुक्षु के जीवन में, मुक्षार्थी के जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होता है, तबका आता है। उस काल में गुजरे बिना किसी को तत्व निर्णय होता नहीं, न होने वाला भी है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज तो बहुत बड़ा शास्त्र लिख रहे हैं तो एक शब्द रख देते हैं, प्रयत्न न, प्रयत्न से ये करते हैं। जो जीव राजा को जानते हैं तो प्रयत्न से जानते हैं, ऐसे नहीं जानते जैसे अखबार पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं जानते। बहुत शास्त्र जी का विनय होता है, क्या शास्त्र जी का भी बहुत विनय होता है। कहते हैं कि जिस तरह बहुत उद्यम से राजा को जानते हैं और विश्वास करते हैं कि ये अवश्य राजा ही है, उसके सेवन करने से अवश्य मुझे धन की प्राप्ति होगी और उसके बाद उसका ही अनुचरण करता है, सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है और उसके चित्त को प्रसन्न करता है, तभी उनको अच्छी तरह धन की प्राप्ति हो जाती है। ये तो दृष्टांत लिया है। अब सिद्धांत कहते हैं कि उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को प्रथम तो आत्मा को जानना, क्या आत्मा को जानना, उसमें 2 बात कही कि सबसे प्रथम आत्मा को जानना, क्या दूसरे धर्म कार्यों का आग्रह को गौण करके प्रथम आत्मा को जानना। क्या बोले, प्रथम शब्द लिखा है, एक एक शब्द में आचार्य महाराज ने रहस्य भरा है। क्या तो संसारी जीव अपनी मनमानी क्रिया प्रथम करता है और उसी का आग्रह रखता है कि पहले मैं वो करूं, पहले मैं वो करूं, पहले मैं वो करूं, फिर अपना स्वरूप को जानने के लिए सत्शास्त्र या सत्समागम सत्श्रवण करूंगा या पढ़ूंगा। दूसरे आग्रह में जीव अपने स्वरूप को जानने को गौण कर देता है तो उसका जो अभिप्राय है वो आचार्य महाराज की आज्ञा के अनुकूल नहीं है। क्या हमें आत्मलाभ चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें आत्म शांति चाहिए, लेकिन हमें श्री गुरु की और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को माननी नहीं है। क्या 2 बात कैसे साथ में होगी? हाँ, जब आचार्य महाराज कहते हैं कि प्रथम तो आत्मा को जानना, तो हम पहले दूसरा करने का विचार करते हैं, पहले हम वो कर ले, फिर अगर समय मिलेगा, टाइम बचेगा तो आत्मा के जानने के लिए थोड़ा बहुत सुनेंगे या पढ़ेंगे, ऐसा काम होने वाला नहीं है। प्रथमतः ऐसा बात लिया है, प्रथमेव क्या लिखा है, तथा आत्मना, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, जो भाई जानते होंगे बहुत अच्छा भाव रहा है इसमें। ऐसा है मूल भाषा में जो भाव आता है, कहने वाले की मूल भाषा में जो भाव आता है तो फिर भाषांतर में नहीं आता, अन्य भाषा में नहीं आता। कितना भी विद्वान विद्वत्ता पूर्ण होवे फिर भी भाषांतर वो भाषांतर है और मूल भाषा वो मूल भाषा होती है। इसलिए हो सके तो बन सके तो थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा की भी जानकारी कर लेनी चाहिए, रस आएगा उसमें। क्या आचार्य महाराज के वचनों में जो अंतर्ध्वनि होती है जिसको हम अंडरटोन कहते हैं ना, अंडरटोन कहते हैं, उसमें क्या आता है कि बात तो शादी होती है लेकिन टोन बदल के कोई करते हैं तो हालत सारी बिगड़ जाती है या सुधर जाती है। टोन पर बहुत आधारित बात होती है। क्या मामूली बात होती है तो जैसे कोई ये कहेंगे कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप थोड़ा इतना काम पता दीजिए कर लीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। और वही बात करने के लिए इतना काम क्यों नहीं किया, उतना ही बोले तो इतना काम नहीं किया अभी तक, काम तो करवाना है लेकिन कर लीजिए क्या नहीं किया क्या, दो में टोन में बहुत फर्क पड़ता है। क्या आप मुझे ये चीज दे दीजिए, ऐसा कहने में क्यों नहीं देते, क्या कितना फर्क पड़ता है तो सारा काम चौपट हो जाता है, बिगड़ जाता है, काम करने वाले को मूड नहीं रहता। आजकल तो नौकर से भी काम लेना हो तो शिष्टाचार के साथ काम लिया जाता है, वो भी अपना सम्मान भंग करके काम नहीं करते। तो ऐसे हर भाषा में अपनी अपनी टोन होती है, ऐसे मूल भाषा में टोन बहुत सुंदर आती है कहने वालों की। यहाँ कहते हैं कि तथा आत्मना मोक्षार्थिना प्रथम एवं आत्मा ज्ञातव्यः, पहले ही आत्मा का ज्ञान करना, सब काम पीछे रख लेना। क्या दूसरे सब काम को पीछे रखना फर्स्ट प्रायोरिटी, क्या बोला था कभी, वरना ये लास्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखोगे तो ये लास्ट प्रायोरिटी होने वाली है और कतई काम आने वाला नहीं है, ये बात हो जाएगी। एक तो ये बात कहीं कि प्रथम जानना, दूसरा मोक्षार्थी होकर के जानना। क्या अखबार पढ़ने की बात नहीं है, ये एक काम निपटा देने की बात नहीं है कि कब घंटा पूरा हो जाए पर कम हब हम यहाँ से चले हमारे काम के लिए चाहे रस नहीं आता है तो बार बार घड़ी को देखने का हो जाता है कि कितना टाइम हुआ, अब कम कब काम पूरा हो, तो आकुलता बढ़ जाती है, रस नहीं आता है ना तो ऐसा हो जाता है। तो भैया अपने आत्म कल्याण की बात चलती है, उसमें रस नहीं आता है तो ये सुखी तो होता है कि तुझे आत्म से आत्मा के परिभ्रमण की बातों में बहुत रस है, तुझे अभी बहुत ज्यादा दुखी होने का ये चिन्ह है, लक्षण है कि तुझे अभी आत्म शांति मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए मोक्षार्थी होकर के, मोक्ष का ध्येय रख करके, दृढ़ मोक्ष इच्छा को प्राप्त होकर के आत्मा को जानना, यदि मोक्षार्थी जीव नहीं हुआ और आत्मा को जानने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करता है तो सफलता को प्राप्त नहीं होता, तो निष्फल जाएगा। तो इसलिए आत्मज्ञान करने के पहले ये शर्त है आचार्य महाराज की कि तुम्हें पहले मोक्षार्थी होकर के सबसे पहले आत्मा को जानने का काम करने का है। उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को प्रथम तो आत्मा को जानना, पश्चात उसी का ही श्रद्धान करना, उसी का श्रद्धान करना, उसमें पंडित जयचंद जी न्याय देते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है और श्रद्धा भी करने का इरादा जीव को जब होगा कि उनको इस श्रद्धा करने के बदली में क्या मिलने वाला है, आत्मा है तो पक्का बनिया है, क्या पक्का बनिया क्या होता है कि कुछ मिलता है तो पैसा देता है, फालतू में कोई पैसा देने वाला नहीं होता, पक्का व्यापारी होता है ना। माल लेने को जाता है तो नकली माल का पैसा देगा कोई? हाँ, कोई व्यापारी कोई ऐसा बोर्ड लगाता है क्या कि हमारे यहाँ शुद्ध नकली माल मिलेगा? हाँ अजीत बाबू, ऐसा कोई लगाता है? हमारे यहाँ शुद्ध असली माल मिलेगा ऐसा लगाएगा कि शुद्ध नकली माल मिलेगा ऐसा लगाएगा? हाँ, फिर तो इनके यहाँ कोई जाने वाला भी नहीं मिलेगा। क्यों? कि पैसे देने वाले को ये तसल्ली होनी चाहिए कि मुझे माल मिलने वाला है, तो यहाँ भी तसल्ली होती है कि श्रद्धा आत्मा का कब करेगा कि यही आत्मा है, उसका आचरण मैंने उसमें एकाग्र होने से अवश्य में सभी कर्मों से छुट करके मेरा जो ध्येय है मोक्ष, उसको मैं अवश्य अवश्य प्राप्त करूंगा। ऐसी श्रद्धान में तसल्ली होती है, क्या होता है, पूरी तसल्ली आ जाती है तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। अभी मैं संसार में रुलने वाला नहीं हूं, ऐसी वो श्रद्धा करता है। और उसके बाद ही आचरण करना, ऐसा श्रद्धा ज्ञान पूर्वक आचरण करना। अभी ये बात आचार्य महाराज ने क्रम से कही, सहानुभूति के काल में ससंवेदन ज्ञान के साथ श्रद्धा और स्वरूपाचरण रूप एकाग्रता उसी समय में पैदा हो जाती है, क्योंकि वहां धर्म की प्राप्ति होती है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ वहां संप्राप्त हो जाते हैं। फिर भी आचार्य महाराज को ने ये बात जब कही तो क्रम से कही, क्योंकि कहने में तो क्रम पड़ता है, एक साथ बोल नहीं सकते तीनों की बात, तो क्रम पड़ता है। उसमें भी एक मर्म भरा है, एक रहस्य भरा है कि पहले ज्ञान की बात किया, फिर श्रद्धान की बात किया, फिर आचरण की बात किया। सूत्र जी में तो वो है, सूत्र जी में तो दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और इधर समयसार में पहले आत्मा को जानना, फिर श्रद्धा करना, फिर अनुचरण करना, ऐसा क्यों लिया? तो यहां आचार्य महाराज कारण कार्य की परंपरा से क्रम को सूचित करते हैं, क्रम को दर्शाते हैं। क्या कारण कार्य की जो परंपरा है उसमें क्रम लगी हुई है। आत्मा एक अपना गुण धर्म का को लिए हुए एक वैज्ञानिक पदार्थ है, पर इसका कार्य भी वैज्ञानिक तौर से होता है, जैसा मन चाहे वैसा नहीं कर सकते। क्या उसका नियत क्रम होता है कार्य पद्धति का, उस क्रम से कार्य होगा, क्रम भंग करके कार्य नहीं हो सकता। और क्रम भंग कर से कौन सा दोष आता है, क्रम विपर्यास नामक दोष आता है। क्या उत्तम चंद जी सुना है क्रम विपर्यास को? क्रम विपर्यास उसका फल फल भी सही आने वाला नहीं होता। इसलिए यहाँ कार्य पद्धति कौन सी होती है यही कहते हैं कि पहले ज्ञान से अपने आत्मा को जानना पहचानना और स्वसंवेदन पूर्वक स्वसंवेदन में जैसा आत्मा अनुभव में आता है वैसा ही मैं हूँ ऐसी निर्विकल्प प्रतीत होती है, उसको सम्यक दर्शन करने में आता है। जो चीज ज्ञान में ही नहीं आवे उसकी प्रतीति होवे ही कहाँ है। व्यापार में भी बिना जान पहचान उधारी का धंधा कोई करता है क्या व्यापारी? हाँ, 10 रुपये का भी माल नहीं देगा, कितना 25-50 हजार लाख रुपये का तो नहीं देगा, लेकिन 10 रुपये का भी नहीं देगा। आप अनजाने व्यापारी के वहां चले जाइए, साहब ये 10 रुपये की चीज मुझे दे दो, मैं घंटा भर आने के बाद दे दूंगा। वो तो भी मैं जानता नहीं। आप सज्जन होंगे क्या? ग्राहकों को बुरा नहीं बताएंगे, बुरा नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं नहीं जानता, ये मेरा दोष है, इसलिए मैं नहीं दे सकता आपको। क्यों? सज्जन के लिबास में भी दुर्जन हो सकते हैं। तो व्यापारी अच्छी तरह जानता है, कोई सुटेड़ बुटेड़ आता है तो उनको जितना चाहे इतना माल भर दे, ऐसा कभी होता नहीं है। जान पहचान होती है तो विश्वास करते हैं। ऐसे अपने आत्मा की प्रतीति, श्रद्धा, विश्वास, आत्मा में अनंत गुण भरे हैं, शांति प्रकट अनुभव में आती है तो उसकी प्रतीति होती है कि उसमें ऐसा स्वभाव है, ऐसी प्रतीति उसमें होती है। तो कहते हैं कि पहले जानना होता है, पर जानने पूर्वक श्रद्धान भले ही उस काल में होता हो लेकिन जानने पूर्वक होता है। और श्रद्धा ज्ञान के बल पर स्वरूप स्थिरता रूप शुद्धोपयोग का चारित्र स्वरूप आचरण का होता है। जिसको श्रद्धा ज्ञान नहीं होता उसको स्वरूप आचरण, जिसको आत्मचारित्र कहते हैं, जिसको वितरागता कहते हैं, तो उसको हो सकती नहीं है। कई लोग इस क्रम को नहीं जानते हैं तो उनको पहले ये लगता है कि आखिर में तो चारित्र में आना ही है, तो हम पहले से क्यों नहीं चले जाएं? और मानते हैं क्या चारित्र को, सही चारित्र को नहीं जानते तो क्या मानते हैं कि हम व्रत अंगीकार कर ले, हम प्रतिज्ञा ले ले तो हमारा चारित्र हो गया, दीक्षा ले ले तो हमारा चारित्र हो गया? तो ऐसा कोई प्रत्याख्यान लेने से, व्रत लेने से, दीक्षा अंगीकार करने से कोई आत्मा का चारित्र नहीं बनता, क्यों कि आत्मा का चारित्र आत्मा में परिणामों को एकाग्र करना, स्थिर होना, वितरागता को प्रकट करना स्थिरता से, उसी को यहाँ भगवान चारित्र कहते हैं। दूसरे कोई चारित्र नहीं होते। चारित्र के विषय में आजकल बहुत गलत फहमियां चलती है, बहुत गलत फहमियां चलती है। कोई व्रतादि के आचरण को चारित्र मानते हैं और कोई आत्मा को जाने पहचाने श्रद्धान किए बिना सीधा ही ध्यान लगाने को बैठ जाते हैं। क्या हमारे सूत्र जी में ध्यान का सूत्र भगवान उमा स्वामी ने दिया है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा दिया ना? तो ये ध्यान की जो परिभाषा है तो जनरल डेफिनेशन है। क्या तो सामान्य परिभाषा है ध्यान की? सामान्य मैंने धर्म ध्यान की परिभाषा नहीं है, वो ध्यान की परिभाषा है। ध्यान चार प्रकार के होते हैं, दो भेद ले तो दो भक्त प्रकार के होते हैं। एक सम्यक ध्यान होता है, सच्चा ध्यान होता है, आत्म ध्यान होता है, और अपध्यान होता है। अपध्यान मैंने खोटा ध्यान होता है, दुष्ट ध्यान होता है। और चार लेवे तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। ऐसे चार ध्यान के चार भेद हैं। उसमें आत्मा में स्थिर हो जाए, यही धर्म ध्यान है। और यही क्रम से होता है कि पहले जाने, पीछे श्रद्धा करे, तब स्थिर होने की ताकत होती है। इससे पहले स्थिर होने की ताकत आती नहीं है। ऐसे को बैठ जाने से आत्मा में स्थिर हुआ नहीं जाता। और जो आत्मा में एकाग्र नहीं है, तो आत्मा के सिवा कोई अन्य द्रव्य भाव में एकाग्र होते हैं। क्या जो आत्मा में एकाग्र नहीं होते, वो अनात्मा में एकाग्र होते हैं। ये होता है ना प्राणायाम वगैरह का। हमारे यहाँ ध्यान केंद्र खुले हुए हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में क्या, अब तो अमेरिका में छोटे छोटे गांव में भी हमारे भारतीय लोग घुस गए हैं, ध्यान केंद्र का बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं। दुकान खोलते हैं ना, तो कोई स्टोर लगाते हैं तो कोई ध्यान का भी केंद्र खोल देते हैं। उन लोग को तो बहुत आकुलता हो गई है। वहां तो वहां रहने वाले को, पाश्चात्य प्रजा को, ये पंचेंद्रिय सुख के साधन बढ़ाने में, भोगने में उतनी आकुलता बढ़ गई है कि सोने में गोली खाने पर भी नींद नहीं आती, और ऑफिस में मूड की टैबलेट लेने पर भी काम करने का मूड नहीं रहता। न दिन में चैन है न रात में चैन है, उतने बेचैन हो जाते। संपत्ति अरबों की होने पर भी उतने बेचैन हो जाते, क्योंकि रस बात ले लिया अजीब का। संपत्ति अजीब है, इसका रस बहुत तीव्रता से ले लिया, तो अपनी शांति अशांति में पलट गई, बेचैन हो जाते हैं। तो फिर हमारे भारत के लोग जाते हैं वहां, तो मुझे तुम शांति देते हैं, उसको दोष खिलाते हैं। क्या शांति का दोष खिला लेते हैं? जितने टाइम इस दोष की असर रहती है, इंस्टेंट शांति वो दे देते हैं। क्या इंस्टेंट अभी फौरन मिल जाती है, बाद में उतनी सी उतनी, शायद इससे बढ़कर ज्यादा भी आकुलता पैदा हो जाती है। क्योंकि ये कृत्रिम उपाय है जिसमें अनंत शांति भरी है। उस शांत स्वरूप के अवलंबन लेने से जो शांति होती है यही स्वाभाविक शांति है, यही शक्ति शांति है, यही सम्यक शांति है। इसको छोड़ करके अनात्मा का आलंबन लेते हैं, देह का आलंबन लेते हैं कि ऐसे शरीर को सत्तार दिखा दो, ऐसे श्वासोश्वास को, ये पवन क्या है, पुद्गल के परमाणु है, श्वासोश्वास पर ध्यान लगाते हैं तो ये पुद्गल परमाणु का ध्यान लगाते हैं, अनात्मा का ध्यान करते हैं। थोड़ी कसाई चंचलता घटने से मंद होती है, एक शांति का डोज लग जाता है कृत्रिम, जैसे वो एनएसिन खाते हैं ना, कुछ टाइम तक तो वो जो हेडेक है वो कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, फिर ज्ञान तंतु को मार के निकलता है। क्या होता है उस वक्त, ज्ञान तंतु को या दूसरे जीवित सेल को भी वो खराब करता है, बॉडी के सेल को खराब करता है, ज्ञान तंतु को खराब करता है, क्योंकि कृत्रिम उपाय किया। ये जो शरीर विज्ञान है ना, ठीक मूल प्रिंसिपल वैसा का वैसा ही ये आत्मा का विज्ञान का है। साइंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल करीब करीब सेम है, दूसरा अलग अलग नहीं है। तो वहां जैसे कृत्रिम उपाय करने से, कृत्रिम दवाई लेने से जैसे रोग मूल में से जाता नहीं, भीतर में रह जाता है और जब दोबारा हो जाता है तो जोर से होता है, क्योंकि वो दवाई कुछ बिगाड़ करके गई है, तो उसमें पूरा निर्दोषता नहीं होने से तंदुरुस्ती मूल में से आती नहीं। वैसे यहाँ पर भी गलत क्रम से, गलत उपाय से कोई आत्म शांति लेने को जाता है, उनको सही शांति नहीं मिलती है, उनकी शांति मिथ्या अभिप्राय हो जाने से और बिगड़ने का पर कार्य रिजल्ट आ जाता है, ये परिणाम आ जाता है इसका। इसलिए देर सदेर होवे कोई इसमें ज्यादा नुकसान नहीं है, जितना जल्दबाजी करके छोटा काम करने में नुकसान हो जाता है। इसलिए कहीं भी गलत रास्ता हमें नहीं पकड़ना है, जितना भी पकड़ना है सही रास्ते पे जाना है। इसलिए हमारे जो आचार्य, हमारे श्री गुरु परमागम में जो बात करते हैं उसी को हम पूरी सावधानी से समझना है, पूरी दरकार से समझना है कि एक एक शब्द में और क्रम में, शब्द में और शब्द के क्रम में क्या तत्व भरा है, कैसा तत्व भरा है, किस प्रकार की बात चली है, उसको हमें अच्छी तरह समझनी है। समझनी है उतना ही नहीं, वही हमारे पवित्र श्री गुरु की आज्ञा है, भगवान कुंदकुंद स्वामी, भगवान अमृतचंद्र स्वामी जैसे महान गुरुओं की ये आज्ञा है, उसको तोड़ने का, उस आज्ञा का उल्लंघन करने का, उस आज्ञा पर पैर रखने का, उसमें फेरबदली करने का हमारा किसी का अधिकार नहीं है। हमारा ये अधिकार नहीं है, हमें आज्ञांकित हो करके उनके अनुभव प्रधान आज्ञा को शिरोधार्य करके बहुत विनय से हमें उसका अनुसरण करना है, जब सही शांति की, सच्ची शांति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ कहते हैं कि अनुभव द्वारा आत्म स्वरूप में लीन होना श्रद्धा ज्ञान पूर्वक, क्योंकि ये तो टीका ही सारी आचार्य महाराज की कारण कार्य पूर्वक चली है। तो कहते हैं कि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, क्या साध्य लिया? निष्कर्म अवस्था साध्य है, मोक्ष अवस्था साध्य है। क्या साध्य है? लेकिन वो अवलंबन भूत नहीं है। क्या? अवलंबन के योग्य नहीं है। साध्य में फिर फर्क है। साधन मोक्ष मार्ग है, इसलिए मोक्ष मार्ग का साध्य मोक्ष होता है, क्योंकि यहाँ साधन साध्य की विदिक्षा चल रही है। लेकिन ये मोक्ष मार्ग भी सिद्धात्मा के अवलंबन से उत्पन्न होता है, और मोक्ष भी सिद्धात्मा के अवलंबन से उत्पन्न होता है। अवलंबन का विषय सिद्धात्मा होता है, अवलंबन का विषय किसी भी पर्याय, मोक्ष की पर्याय भी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर साध्य जो निष्कर्म अवस्था, मैंने मोक्ष अवस्था, स्वरूप अभेद शुद्ध स्वरूप, अकेली अवस्था नहीं। क्या? स्वरूप शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप भी ऐसा ही है, उसका अवलंबन साथ वही अवस्था पैदा होती है। अकेली अवस्था की बात वहां करने में नहीं आई, क्योंकि अकेली अवस्था को अवधारण करने से निश्चय से राग और मिथ्या की उत्पत्ति होती है, जिसको पर्याय दृष्टि हम कहते हैं। पर्याय दृष्टि में पर्याय मात्र का स्वयं के रूप में अवधारण हो जाना या कर लेना, उसी को पर्याय दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि कहने में आती है। तो उस रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, उसकी सिद्धि मैंने प्राप्ति की, यही रीति से उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। उपपत्ति मैंने उत्पन्न होना, अनुपपत्ति मैंने अनुत्पन्न होना, ये शास्त्रीय परिभाषा है। अर्थात साध्य की सिद्धि वही रीति से होती है, दूसरी रीति से नहीं होती। रीति मैंने विधि, विधि मैंने कार्य पद्धति, यही कार्य पद्धति होती है। कार्य पद्धति में कहीं भी हेर फेर नहीं होता, क्योंकि यह वैज्ञानिक कार्य पद्धति है। गुरुदेव तो अपने जमाने में बहुत कम पढ़े हैं, पढ़े थे, कितना? बहुत कम पढ़े थे। उस जमाने में हमारे यहाँ गुजरात में 7 कक्षाएं थी, 7 धोरण, 7 स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7वीं हुई कि विद्यार्थी का पढ़ने की पढ़ाई पूरी हो गई। फिर जो संपन्न आदमी है वो अपने घर में, अपनी दुकान में, व्यापार में लगता है, और जो सामान्य है वो नौकरी पे लग जाता है, वो अपने अपने धंधे में, कारोबार में लग जाते हैं। फिर वहाँ से कॉमर्शियल लाइफ 12, 13, 14 साल की उम्रों में चालू हो जाती है। आजकल तो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक डिग्री पर डिग्री लेनी पड़ती है, फिर कॉमर्शियल लाइफ चालू होती है। गुरुदेव भी 13 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में अपनी दुकान पे, बड़े भाई की जो भागीदारी थी, हाँ, अपने दुकान में, व्यापार में लग गए थे। मेरा ये कहना है कि पढ़े थे बहुत कम, फिर भी वो दृष्टांत विज्ञान के, साइंस के देते थे। बहुत रोजाना, और खास करके बहनों को तो समझ में आ जावे, महिलाओं को, ऐसा वो दृष्टांत देते थे इस विषय में कि वो हलवा बनाते हैं, जो शाम को खाने को आजकल होता है हलवा, उसमें क्या होता है? आटा, घी और शक्कर या गुड़ का पानी, 3 चीज मिलाते हैं। 3 चीज है, लेकिन एक साथ तीनों को मिला करके उसको पकाने को नहीं देते। पकाते हैं क्या इसे? तो ये 3 चीज है ना, रख दो साथ में और उसको पकाओ, हाँ तीनों बिगड़ जाएगी। क्या? आटा भी बिगड़ेगा, शक्कर भी बिगड़ेगी और घी भी बिगड़ जाएगा। और बहुत रोचक शैली में वो बताते थे कि अगर कोई बहन बहुत बुद्धिमान है, बहुत मैंने ओवरवाइज जिसको कहते हैं हमारे गुजराती में डॉग डायरा कहते हैं क्या, हाँ वो तो गुरुदेव को कहते कि डाई की बिक्री हो क्या, मैंने बुद्धिमान माँ की लड़की बुद्धिमान होती है ऐसी कोई हो, ये क्या आटा को पहले घी में सेकने से क्या फायदा, बाद में घी ऊपर रखेंगे, पहले तो गुड़ के पानी में सेक दो फिर बाद में हम करेंगे घी डालेंगे ऊपर, इसलिए हमारा घी निकम्मा नहीं जावे, ये तो पहले आटा घी पी जाता है, हमारे घी को तो आटा पी जाता है, ये गलत तरीका है। तो कोई डाई की बिक्री होती है वो पहले पानी डालती है, तो कहते थे कि ये तीनों बिगड़ने वाले हैं, ऐसा भी हलवा होने वाला नहीं है, तीनों बिगड़ जाएगा और कोई काम की चीज नहीं रहेगी, न खाने की न वो लगाते हैं ना लुपुरी कहते हैं हमारे गुजराती शब्द में, कुछ थोड़ा होता है पकता नहीं है कच्चा रहता है, तो आटा में पानी मिला करके उसकी वो बनाते हैं थोड़ी सी छोटी सी लुकड़ी उधर लगा देते हैं तो पक जाता है, इलाई की दवा नहीं लगाते, पहले तो ऐसे ही घर में चलता था फोड़ा को पकाने के लिए, मुझे लुपड़ी भी नहीं बनेगी पहले, ये फोड़ा के काम में भी नहीं आएगी, खाने के काम में तो आए जाने। ऐसे बहुत रोचक शैली से उनके कहने का जो अभिप्राय था तो वो था कि एक हलवा जैसी मामूली चीज भी अपने क्रम से बनाई जाती है, उसमें क्रम भंग नहीं चलता, विपर्यास नहीं चलता, क्योंकि वो भी एक साइंस है, एक विज्ञान की उपलब्धि है वो। वैसे आत्मा आत्मा का धर्म है, आत्मा की शांति है, तो वैज्ञानिक तौर से होती है, उस क्रम को तोड़ के अगर कोई करना चाहते हैं तो दूसरी मुश्किली को प्राप्त होता है, आत्मधर्म आत्म शांति उसको कभी नहीं मिलती। ये अनुभवी पुरुषों का कहना है, क्या है, जो अनुभवी पुरुषों ने महात्माओं ने अनुभव से अपनी आत्म शांति को सिद्ध किया प्राप्त किया, इसका सबूत है कि वो जंगल में रहते थे, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी न रहने की न कपड़ों की न खाने की, नो प्रायर अरेंजमेंट, कोई आगामी व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं करे कि हमारे लिए कोई व्यवस्था करे, होती तो नहीं थी लेकिन करने के लिए कोई करे तो उनके लिए वो तैयार नहीं होते थे। फिर इनकी शांति देखो तो देखने वाले को शांति मिल जाए, क्या दर्शन करने वाले को शांति मिल जाए, इतनी तो शांति में थे वो, कोई व्यवस्था नहीं, फिर इतनी शांति कहां से आई, तो इस भीतर में अपने वैज्ञानिक पद्धति से वो निकली। कहते हैं कि जब वो हिटलर के जमाने में जर्मन के कुछ वैज्ञानिक लोग हमारे भारत में आए थे और हमारे बहुत से जैन ग्रंथों को वो जर्मनी में ले गए हैं, आज भी है, हमने थोड़ा संशोधन किया है इस पर रिसर्च किया था तो हमको 1215 जैन ग्रंथों का सारा लिस्ट मिला था जो जर्मन भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन जो प्रॉपर नेम है वो तो अंग्रेजी लिपि में समय सारा ऐसे वाई ऐसे आर एस ऐसे लिखने में आते हैं, ऐसे 1200 ग्रंथ का प्रॉपर नेम वाला, फिर बाकी का जो डेटा है वो जर्मन भाषा में नेम का, तो उतने तो वो ओपन लाइब्रेरी में है, उनकी सीक्रेट लाइब्रेरी में कितना होगा वो तो कह नहीं कह सकते, क्योंकि वो बहुत क्रूर प्रजा है तो अपनी सीक्रेट कभी खोलती नहीं है, वो संशोधन करती वैज्ञानिक शोध खोज करते हैं अपने आगमों में से। तो जब वो लोग आए थे और धवल महाधवल जय धवल आदि सब वहाँ हैं, तो जब उन्होंने पूछा कि अरे ये तो मैथमेटिक्स के ग्रंथ है, गणितानुयोग करणानुयोग, और उतना ये विषय है कि लिखने वालों ने बियॉन्ड मैथमेटिक्स कहीं बातें लिखी है क्या? मैथमेटिक्स के बाहर से जा करके लिखी है, तो ऐसे लिखने वाले को तो अच्छे से अच्छी सुविधा मिली होगी। हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट होते हैं उनको तो हम एयर कंडीशन के कमरे देते हैं, एयर कंडीशन कार देते हैं, सभी प्रकार की सुविधा देते हैं, खाने की पीने की इनके परिवार के लिए पूरी तनख्वाह देते हैं, जब वो आराम से अपनी खोज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी पूरी सुविधा मिली होगी। तो किसी ने बताया कि वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे और घर में भी नहीं रहते थे, निराश्रय जंगल में। तो बोले क्या नहीं? जंगल में रहते थे, आश्रय भी नहीं रहने का और पहनने के कपड़े भी नहीं, ठंडी गर्मी में क्या हालत हो जाए, और खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं, तनख्वाह भी नहीं, क्या बात है। और फिर जंगल में रह करके ऐसी बातें लिखी, ये कोई आदमी हो ही नहीं सकता, ये तो कोई दैवी फिरस्ता ही हो सकता है, मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। वो मानने को तैयार नहीं थे, ऐसी बातें वो सुन करके मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसी हालत में रह करके ऐसी चीज अपने ज्ञान में से कोई निकाल सकते हैं। तो उनको एक शब्द में वो बोलते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे, सुपर इंटेलिजेंट नहीं थे, किंतु वो इंटेलेक्चुअल जायंट थे। कोई क्या ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं वो लोग। तो ऐसे अनुभवी महात्माओं के जो बात होती है उनके एक एक वचन में, एक एक लफ्ज में, एक एक शब्द में अनंत अनंत आगम भरे हैं। श्रीमद जी कहते हैं कि अनुभवियों के एक शब्द में अनंत आगम भरे हैं, उतनी गंभीरता से उनमें से जो माल भरा है वो लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तभी इसमें से कुछ अंश प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ जो कार्य पद्धति की विषय चला है उसका थियोरी तो बता दिया आचार्य महाराज ने, अब वो प्रयोग कैसे करना उसका प्रयोग को वो दिखाएंगे। आगे की टीका में अपने प्रयोग की बात चलेगी, समय हुआ है।